अब अजनबी की गठड़ी क्या थी, ज्यादा बड़ी थी और उसको आदत नहीं थी कि मैं इतना वजन उठा के जाऊं, और जो चोर था उसकी गठड़ी भी छोटी थी और वो मतलब उसको आदत भी थी चोरी करने की। तो चोर ने उसको ठोकर मारी, जैसे पीछे से ना ठोकर मारी कि चलता क्यों नहीं है लालची, इतना बड़ा गट्ठर बांध रखा है तो अब चलता क्यों नहीं। अजनबी शख्स तेज तेज कदम उठाने लगा, आगे एक पुल था, पुल की चढ़ाई पर अजनबी गठड़ी संभाल ना सका और गिर पड़ा, गठड़ी भी दूर जा गिरी। इब्ने सबा जो चोर था बड़ा मशहूर था, एक लात उसने उसको मारी, गालियां देते बोला कमबख्त इतना लादा क्यों था जो अब संभल नहीं रहा। हालांकि उसकी गठड़ी जो उसने तैयार की थी बांध कर उसने अपने सर ले ली और छोटी उसको दे दी, और अब कह रहा है कमबख्त इतना बांधा क्यों था जो चला नहीं जाता। अब उसने बेचारे ने फिर गठड़ी उठाई, तेज तेज चलने लगा, अजनबी तेज तेज आगे चल रहा था, चोर पीछे पीछे। अब ये लोग शहर से निकल कर एक वीरान जंगल में पहुंचे। इब्ने सबा चिल्लाया, अरे रुक जा, कहां को जाएगा, अब यहीं डाल दे। अजनबी ने वहीं गठड़ी रख दी, वो बुरी तरह हांफ रहा था। अब जो है वो जो अजनबी था उसने चोर की तरफ हाथ बढ़ाया और निहायत आजिज़ी से बोला, भाई आपके काम में मुझसे सुस्ती हुई, आपको बड़ी तकलीफ पहुंची, माफ कीजिएगा। ये कहा और अपना हाथ छुड़ाता हुआ अपनी राह पर रवाना हो गया। कुछ नहीं उसे कहा कि मुझे आधा दो ना दो, बस फिर वापस पलट आया। इब्ने सबात का जी तो नहीं चाह रहा था कि अजनबी को कुछ दे, लेकिन वो अजनबी की बातों से, इसकी कुछ हरकत से बहुत मुतासिर हुआ और इसने सोचा ये अजीबोगरीब चोर है, और चीखा, अरे क्या कुछ अपना हिस्सा नहीं लेकर जाएगा। अजनबी बोला, दोस्त मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, आप मेरे मेहमान थे, जो मैं आपकी खिदमत कर सकता था मैंने की, वाकई में आपकी कुछ ज्यादा खिदमत नहीं कर सका। चोर, क्या मतलब, क्या वो तुम्हारा ही घर था अजनबी? जी हाँ, वो मेरा ही गरीब खाना है, अब आपने देख लिया, जब जरूरत हो बेतकल्लुफ तशरीफ लाइए, मुझसे जो खिदमत हो सकी मैं जरूर करूंगा। ये कहा और अजनबी सलाम करके वापिस आ गया। इब्ने सबात हक्का बक्का अजनबी को जाता देखता रहा, उसके मुंह से एक लफ्ज भी ना निकला, उसके होंठ सिल गए। वो सोच रहा था अजीबो गरीब आदमी है, चोर के साथ ऐसा सलूक और आइंदा की दावत भी, और मिजाज में ऐसी बेनफसी और खाकसारी, रास्ते में मैंने इसको कैसी कैसी गालियां दी और मैंने लाते मारी, और गठड़ी रखते हुए कैसी आजी से इसने कहा कि माफ कीजिए, मैंने आपके काम में बड़ी सुस्ती दिखाई और मैं आपकी कोई ज्यादा खिदमत नहीं कर सका। चोर कहने लगा, जरूर ये कोई फरिश्ता था, यकीन नहीं उसको आया ना, उसने कहा इंसान नहीं है तो कोई फरिश्ता था। चोर दिन चढ़े तक वहीं खड़ा ये सोचता रहा, उसके दिल में जबरदस्त हलचल थी, उसका जमीर उसे मलामत कर रहा था, दिन चढ़ चुका था, ना माल छुपाने की फिक्र थी ना पकड़े जाने का खौफ था, माल वहीं पड़ा था, और आज अंदर एक इनकलाब आ गया था, दिल धड़क रहा था, और वो सोच चाहता था कि अब दिन की रोशनी में उस मोहसिन को दोबारा देखूं, और बेख्तियार शहर की तरफ गया और भागा जा रहा था, बगदाद की सड़कों गलियों से दौड़ता दौड़ता वो उस हवेली के पास जाकर रुक गया। सामने एक लकड़हारे का झोंपड़ा था, वहां पहुंचा, उसे पूछा, भाई ये सामने वाली हवेली किनकी है, क्या आपका नाम इनको आता है? लकड़हारे ने एक नजर चोर पर डाली, इब्ने सबात पर, कहा क्या तुम जो है वो नहीं जानते इनको, ये हमारे बगदाद के लिए रहमत का साया है, और तुम्हारा क्या मतलब इस हवेली से? लकड़हारे ने चोर को कहा कि ये तो हमारे बगदाद के लिए रहमत का सरमाया, और तुम्हारा क्या मतलब इस घर से? लकड़हारा डर गया और लकड़हारा बड़ा हैरान के भी ये क्यों। इब्ने सबात, अरे भाई तुम्हें दुनिया भर की बातों से क्या मतलब, बस ये बताओ ये है कौन? लकड़हारा, भाई ये ताजिर नहीं है, वो क्योंकि उसको पता था थान निकले तो ताजिर है, उसने कहा ये बगदाद के मशहूर बुजुर्ग हैं, तुमने उनका नाम नहीं सुना, ये है जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह। इब्ने सबात, अच्छा ये है जुनेद बगदादी, वो एकदम फाटक के अंदर खटक घुस गया, अंदर जाकर देखा चटाई पर हजरत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह बैठे हुए हैं, उनका चेहरा ईमान के नूर से जगमगा रहा था, और ये इनके कदमों में गिर पड़ा और आंखों से, चोर की आंखों से आंसुओं का सैलाब था। हजरत ने बड़ी शफकत से उसका सर उठाया, कहा भाई इंसान को सिर्फ अपने अल्लाह के सामने अपना सर झुकाना चाहिए और उसी की इबादत करनी चाहिए। अब उसकी दिल की दुनिया बदल चुकी थी, उनके शागिर्दों में शामिल हो गया और फिर उसके बाद जो है उसका नाम जो था जुनेद बगदादी के शागिर्दों में मशहूर हो गया, जो कि हदीस और दीन का इल्म जो थे वो सीखने लगे। तो हजरत जुनेद बगदादी के रवैये ने उसकी जिंदगी में एक इनकलाब पैदा किया। तो अमले सवाले आसान नहीं है, अमले सवाले के लिए बड़ी मेहनत और बड़ी कुर्बानी करनी पड़ती है, और ऐसे वाकयात तो बहुत ही नादिर वाकयात है जो हमें सुनने में और देखने में मिलते हैं। तो ये एक बड़ी खूबसूरत मिसाल है, मैंने ये कहानी बड़ी बचपन में भी कभी पढ़ी थी और मुझे, मैं अक्सर बच्चों को भी सुनाती थी और मुझे बहुत अच्छी लगती है ये कहानी। तो असल बात क्या है कि इंसान, हम जो है रवैये, हमारे रवैये दूसरों को बदलेंगे, हमारी सख्त गिरी, हमारा गुस्सा, हमारा जो है वो बनना, पुलिसमैन बनना, जैसे पेरेंट्स है, एज ए पेरेंट्स, अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की बात झूठी नहीं हो सकती। नरमी खैर लाती है, नरमी खैर लाती है, जिसको नरमी से नवाजा गया उसको खैर कसीर से नवाजा गया। और अल्लाह ताला खुद रहीम करीम है, अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह की गिरफ्त की सूरत वो गज़वा उहद के तब्सरे पर फरमाया कि अल्लाह का शुक्र है कि आप नरम दिल हैं, अगर सख्त दिल होते तो लोग तुम्हारे गिर से छट जाते। तो आइए हम ईमान के साथ अमले सवाले करें और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करें। वतवासौ बिस्सब्र, अगर आपकी दोस्त आपको बताती है कि उसके ससुराल में या उसके घर में उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता तो उसको अच्छा मशवरा दें। बेटी अगर कोई बात आके कहती है तो बेटी को बताएं कि बेटा थोड़े दिन ऐसे आते हैं जहां फूल वहीं जो है वो लहलहाता है जहां पे कांटे होते हैं, कांटों में ही फूल जो है वो लहलहाता है। इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आना, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। तो कहकशाएं और सितारे और जन्नतें और अच्छे दिन आते हैं मेहनत मुशक्कत के बाद। तो दुनिया की जिंदगी कबद है, यहाँ पे हमने शुरू में ही पढ़ा ना, अल्लाह ताला ने हमें क्या बात फरमाई कि हम लकद खलकनल इंसान फी कबद, कबद मुशक्कत की जिंदगी। तो अब तो हम कुरान को भी खेल खेल के पढ़ना चाहते हैं, मस्जिदों में भी खिलौने जमा कर दिए हमने, है ना। तो संजीदगी आनी चाहिए मिजाजों में, रवैयों में, और बगैर संजीदगी के शादीशुदा जिंदगी कामयाब नहीं हो सकती, याद रखिएगा। उसके लिए हमें अपने बच्चों को बताना है कि ये खेल और तमाशा नहीं है जो निकाह है, उनको सिखाना होगा और उनको बिठाकर बताना होगा ये खेल और तमाशा नहीं है। और सबसे ज्यादा कमी जो है वो सब्र की कमी है जिसकी वजह से तलाकें हो रही हैं। फिर आखिरी आयात हैं और दो रवैये के मुताबिक दो अंजाम, उलाइका असहाबुल मैमना वल्लज़ीन कफरू बिआयातिना हुम असहाबुल मशअमा अलैहिम नारुम मुसदा। तो एक तो वो लोग थे उनकी अच्छी सिफात बताकर कहा, ईमान अमले सवाले हैं और सब्र और फिर रहम की तलकीन, तो नेक लोग हैं। अब उलाइका असहाबुल मैमना, यही दाएं हाथ वाले हैं। और दूसरा रवैया क्या है असहाबुल मशअमा का, जिन्होंने हमारी आयात को मानने से इनकार किया, वो बाएं बाजू वाले हैं और इन पर आग छाई भी होगी। सूरत अश-शम्स, इसका मौजू नेकी और बदी का फर्क समझाना है। एक रुकू 15 आयात मक्की सूरत है, अल्फाज और कलिमात 54 हैं, हरूफ की तादाद 247 है, 247। और इस सूरत में नेकी और बदी का फर्क समझाकर ये बताया गया है कि जो बुरे काम करते हैं उनका अंजाम क्या है और जो नेक काम करते हैं फिर वो नेकी कैसे इख्तियार कर सकते हैं अपना तज़किया करके। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो 6 कस्में खाई हैं, 6 दलाइल देकर एक अहम कसम और दलील की तरफ जो है मुतवज्जो किया है। फरमाया वश्शम्सि वदुहाहा वल्कमरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यख्शाहा वस्समाई वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तुहाहा। और आप पहले भी ये दलाइल पढ़ चुके हैं लेकिन अंदाज मुख्तलिफ है। कसम है सूरज और उसकी धूप की, और चांद की कसम जबकि वो उसके पीछे पीछे आता है। तो ये सूरज और चांद जो हैं, दोनों की मिसाल देकर अल्लाह ताला ने क्या बताया है, सूरज की तपिश में, रोशनी में गर्मी होती है और चांद की रोशनी में ठंडक होती है। सख्ती के बाद नरमी है, आप देख सकते हैं ना, सख्ती के बाद नरमी है, दिन के बाद रात है, एक तगैयुर है, इनकलाब है। सूरज और उसकी धूप की कसम, चांद की कसम जब उसके पीछे पीछे आता है, और दिन की कसम जब वो सूरज को नुमाया कर देता है। सूरज तो होता है और नुमाया हो जाता है, और रात की कसम जबकि वो सूरज को ढांप लेती है। वल्लैली इज़ा यख्शाहा, तो ये सूरज चांद दिन और रात ये क्या है, एक तगैयुर है, एक चेंज है। तो जो रब ये सब कुछ कर रहा है वो रब जो है वो दुनिया के बाद कयामत जरूर पैदा करेगा, और फिर उसके बाद इंसान जो है उसको उसके अमाल की जवाबदेही करनी होगी। तो ये जो आयात हैं, ये आयात सूरज चांद दिन रात ये, और उसके साथ ही आगे देखें वस समाय वमा बनाहा, और आसमान की और उस जात की कसम जिसने इसको बनाया, वल अर्थी वमा तोहा, और जमीन की और जात की कसम जिसने उसे बिछाया। तो ये छह जो है कसमें खाई हैं अल्लाह ताला ने, और ये सूरज चांद दिन रात जमीन आसमान ये सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, और इनके आसार भी मुख्तलिफ हैं, इनके नतायज भी मुख्तलिफ हैं। बिल्कुल इसी तरह जो है आगे अहम बात की तरफ इशारा किया, वह नफ्सिम वमा सव्वाहा, ये छह कसमें खाकर इंसानी नफ्स की कसम खाई, और नफ्से इंसानी की कसम और उस जात की कसम जिसने उसको बराबर किया, जिसने उसे हमवार किया। हमवार करने से मुराद क्या है कि हाथ पांव दिमाग और जो ये फाइव सेंसेस हैं, बड़ा एक तनासुब और बड़ा एक इनमें बैलेंस है। अल्लाह ताला ने इंसान को जो भी कुदरत जो भी सलाहियतें दी हैं, जो भी कुव्वतें दी हैं, और बड़ी मुनासिब हैं। तो और इन सब चीजों की तरफ जो है वो इशारा करने का मकसद क्या है कि जिस तरह इंसान ने अल्लाह ने छह चीजें बनाई, उसी तरह अल्लाह ने नफ्स को भी बनाया इंसान को, और बनाने का मकसद था क्या, फअलहमहा फुजूरहा व तक्वाहा, और नफ्से इंसानी को क्या किया, बदी और परहेजगारी इस पर इल्हाम कर दी। तो नेकी और बदी, खैर और शर, इसकी तमीज हमारे अंदर है, हर एक को पता होता है अच्छा क्या है बुरा क्या है, हत्ता के काफिर भी है ना, तो ये उसका जिक्र है। लेकिन पास कौन होगा, फलाह कौन पाएगा, कद अफलाह मन जक्का व कद ख्वाबा मन दस्सा, बड़ी अहम आयतें हैं और हम बार बार मसलसल ये पढ़ रहे हैं मजमून। यकीनन फलाह पा गया वो जिसने नफ्स का तज़किया किया, और ना मुराद हुआ वो जिसने उसको दबा दिया। तो मेरी प्यारी बहनों, ये जो तज़किया है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पाक करना, उभारना, नशोनुमा देना, प्योरीफाई करना, ब्यूटीफाई करना, ये दोनों मानी इसके अंदर आते हैं। और यहाँ पे ये जो है लफ्स अफलाह, ये तो आपको पता ही है कि फलाहुन किसान को भी कहते हैं, चीरना, फाड़ना, मेहनत करके फिर कामयाबी हासिल करना। फिर ये आयत 10 में है, वकद खाब अमन दस्साहा, ये जरा दस्साहा आपके लिए नया है, और ये जो दाल सीन सीन, इसके मानी होते हैं किसी चीज को दुबाना, छुपाना, इगवा करना, गुमराह करना। तो यहां पर ये बात बताई जा रही है कि हमें अपने जो बुरे रुझानात हैं, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, बुरे औसाफ हैं, उनको दबा देना है, उनको छुपा देना है। जैसे मुर्दे को दफन करने के लिए भी ये रूट इस्तेमाल किया जाता है, मुर्दा, क्योंकि मुर्दे को यूं ही छोड़ दें तो ये उसकी तजलील है, उसको इज्जत के साथ जमीन के अंदर दबा दिया जाए ताकि लाश सड़े ना, गले ना, खराब ना हो, जानवर चिरिंद परिंद उसको फाड़े ना, खाए ना। तो दाल सीन सीन का अब यहां पे हम किस मानी में इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम अपने बुरे रुझानात को और अपनी जो हमारी ख्वाहिशात हैं, जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, हम उनको जो है वो दबाएं, उनको हम छुपाएं। जिस तरह एक लाश कब्र पर मट्टी डालने के बाद छुप जाती है, बिल्कुल इसी तरह हम अपने फजूर को, अपनी बुराइयों को छुपा दें और तकवा को उभारें। ये है इस इन आयात का हासिल, और इस पर बहुत बात हो सकती है, वकद ख्वाबा मन दस्साहा, तो इसके लिए बड़ी मेहनत की जरूरत है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तारीख की एक अहम कौम की मिसाल दी है कि उसने तज़किया नहीं किया था अपना, बल्कि उसने तुगयानी इख्तियार की थी। फरमाया, कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ बअसा अशक़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि वसुक़याहा। समूद ने अपनी सरकशी की बिना पर झुटलाया, जब उस कौम का सबसे शकी आदमी भिपर कर उठा तो अल्लाह के रसूल ने उन लोगों से कहा, कौन से रसूल थे, سوال علیہ السلام، انہوں نے کہا ناقت اللہ، یہ ہے اللہ کی اونٹنی، وسقیاہا، اور یہ ہے اس کا پانی پینا. کیونکہ حضرت سوال علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی یہ معجزے کے طور پر آئی تھی، اور یہ طے تھا ان کی اور قوم کے درمیان کہ جہاں چاہے گی چرے چگے گی اور جہاں سے چاہے گی پانی پیے گی. اور لیکن جو ہے آپس میں ان کا جب جھگڑا چل رہا تھا تو پھر کیا تھا کہ یہ لوگ جو تھے اس کو مارنا چاہتے تھے. تو قوم میں سے ایک شخص تھا قدار بن سالف، اس نے اونٹنی کی کونچے کاٹی تھی. فکذبوہ فاقروہا، پھر اس نے جو بات طے تھی اس کو جھوٹ قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کر کے ان کو بتایا تھا کہ اگر اونٹنی کو ہاتھ لگایا، اگر تم نے چھیڑا، تو پھر جو ہے اللہ کا عذاب تم پر آئے گا. پہلے تو کچھ دیر ڈرتے رہے، پھر لیکن اٹھ کر کھڑے ہو گئے. سورۃ اعراف، سورۃ الشعراء، سورۃ القمر میں اس کی تفصیل ہے. پھر ہوا کیا؟ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا. آخر کر ان کے گناہ کی سزا میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوندے خاک کر ڈالا، اور پھر اللہ اپنے اس فعل کے اس کو برے انجام کا کوئی خوف نہیں ہے. یعنی اللہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی ڈر ہو. تو اللہ نے ان کو ملیا میٹ کر دیا اور قوم سمود کو تباہ و برباد کر دیا گیا. ایسا عذاب آیا کہ قوم سمود جو تھی وہ دنیا سے ملیا میٹ کر دی گئی. سورت اللیل کا مضمون بھی سورت الشمس سے ملتا جلتا ہے. اس کا موضوع بھی زندگی کے دو مختلف راستے اور ان کے انجام اور نتائج کو بیان کرنا ہے. اس سورت کے دو حصے ہیں، تو ہم پہلے حصے کو سمجھتے ہیں جیسے، اور پھر اس کے بعد دوسرے کو. اور یہ سورت جو ہے اس مکی سورت ہے، 21 آیات، 1 رکوع، الفاظ کلمات 71 اور حروف کی تعداد 310 ہے. تو آئیے پہلا حصہ جو ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں، جو پہلی 11 آیتیں ہیں، جس میں بتایا گیا کہ زندگی کے دو مختلف راستے، ان کا فرق، ان کا انجام، ان کے نتائج. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانثى. قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے اور دن کی جبکہ وہ روشن ہو جائے. تو دیکھیں دونوں مختلف ہیں نا آپس میں، ایک اندھیرا ہے اور ایک روشن ہے، ایک رات ہے ایک دن ہے. اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، وہی رب ہے جو کہ جس نے جوڑے جوڑے پیدا کیے. ان سعیکم لشتا، در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں. جس طرح رات اور دن مختلف ہیں، نر اور مادہ مختلف ہیں، اسی طرح ہر انسان مختلف راہوں پہ چلتے ہیں اور پھر مختلف کوششیں کرتے ہیں اور مختلف ان کے نتائج ہیں. لیکن یہ جو مختلف کوششیں ہیں یہ بڑی دو قسموں میں تقسیم ہو جاتی ہیں، خیر اور شر، بد اور نیک. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. تو جس نے راہ خدا میں مال دیا اور اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کیا. تو آپ دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے انفاق کا ذکر ہے، اللہ کے راستے میں مال دینا. زکوٰۃ تو فرض ہے ہی، اس کے علاوہ بھی اپنے دل کو کھلا کرنا، اپنی مٹھی کو ڈھیلا کرنا، اپنی پاکٹ کو، اپنے بینک بیلنس کو، وہ اپنا زیور، اپنا مال جو ہم نے رکھا ہے جمع کر کے، اس کو اللہ کے راستے میں دینا. اور ہم جمع کر کے رکھتے ہیں، سیند کر رکھتے ہیں، اور یہ سیند کا رکھا ہوا مال ہمارے کام نہیں آئے گا، وہی جو کہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے. تو دوسری چیز کیا ہے؟ متقی. یہاں پہ متقی اس کو کہا جا رہا ہے جو اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے. تو مال دینے سے دنیا کی محبت دبتی ہے اور آخرت کی محبت ابھرتی ہے. اور اگر واقعی ہم مال سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اس راستے میں اس کو جمع کرا دینا چاہیے، اس جگہ پہ جہاں پہ ہمیں زیادہ ضرورت ہے. جیسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہتی ہیں، ہم نے صدقہ کیا ایک بکری اور اللہ کے نبی گھر آئے تو پوچھا عائشہ کیا باقی جو ہے بچا، کہا کہ ایک کندھا شولڈر رہ گیا، باقی گوشت ہم نے دے دیا. کہا کہ باقی سارا بچ گیا سوائے ایک کندھے کے. تو یہ ہے اصل بات. پھر فرمایا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور بھلائی کو سچ مانا. हक के गवाह बने। फसानो यस्से रहू लिल युसरा, तो हम उसको आसान रास्ते के लिए सहूलत देंगे। तो आसान रास्ता जो है इससे क्या मुराद है, इसका मतलब है इन्फाक का रास्ता, तकवा का रास्ता, हदायत का रास्ता। और ये जो आयात है मुफस्सरीन कहते हैं अबू बकर सिद्दीक के लिए नाजिल हुई, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु जो थे उन्होंने कहते हैं कि 6 गुलाम आजाद किए जिन्हें अहले मक्का मुसलमान होने की वजह से सख्त तकलीफ देते थे, जिसमें बिलाल हबशी रदी अल्लाह अन्हु भी थे, और बड़ी कीमत देकर उन्होंने आजाद करवाए थे। तो यहाँ पे ये जो मुत्तकी शख्स है और ये जो नेकियां हैं जिनका जिक्र है अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु, यहाँ पे वसद्दका सिद्दीक, ठीक है, और फिर हर मुसलमान मुराद है। वह अम्मा मम बखीला वस्तखना, और जिसने बुखल किया और अपने अल्लाह से बेनियाजी बरती। वकज़्ज़बा बिलहुस्ना, और भलाई को झुटलाया। तो नेकी हमारे दरवाजे पे दस्तक देती है, हर लम्हे हमारे सामने कोई ना कोई नेकी आती है, अगर हम उसको वेलकम नहीं करते वो हमारे पास से चली जाती है, फिर दूसरे के पास जाती है और वो उसको वेलकम करता है तो वो फिर खुशकिस्मत लोगों में शामिल हो जाता है। झुटलाने से मुराद क्या है, घंटी की बेल बजी तो मैं कहती हूं कि जो है वो बहन मेरी क्यों नहीं दरवाजा खोलती, मैं उठती नहीं हूं, मैं अपनी बहन का इंतजार करती हूँ, तो मेरे पास से नेकी चली गई, अब उसके पास गई है तो मैंने नेकी को झुटला दिया। अम्मी को चाय चाहिए तो छोटी बहन क्यों नहीं चाय देती, मैं क्यों चाय दूं, बड़ी बहन क्यों नहीं चाय देती, है ना। हम दूसरों को कहते हैं, जैसे वो कुछ काम की बात थी, फोन का कुछ ठीक करना था तो बड़े बेटे को मैंने कहा, तो ये छोटे बेटे के बारे में कहने लगा कि ये क्यों नहीं कर देता, ये क्या करता रहता बैठा, तो मैंने कहा कि अपनी बात करो कि आपने करना है या नहीं करना, छोटे की क्यों बात करते हो। तो हमारा काम है, हम ये ना सोचें कि बाकी लोग कर देंगे, हमारा ये काम है मैं करूंगी, ये मेरी जन्नत है, ये मेरी आखरत है ना, तो ये तकवा इसको कहते हैं। नेकियां जो है ना, बहुत थोड़ा वक्त है हमारे पास और इसको जाया करने की बजाय नेकियां करनी है। फिर फरमाया इसको हम क्या करते हैं, जो नेकी को झुटलाता है, फसा नुयस्सिरुहु लिल उसरा, हम उसको सख्त रास्ते के लिए सहूलत देंगे। तो सख्त रास्ते से मुराद जो है वो गुनाहों का रास्ता, शैतान का रास्ता, हराम का रास्ता, जराइम का रास्ता, नशे का, खुदकुशी का, दुनिया की जिंदगी जिसमें इंसान चलता है तो वो रास्ता, उस तरफ हम उन्हें सहूल देंगे। मा युग्नी अन्हु मालुहू इज़ा तरद्दा, और उसका माल आखिर उसके किस काम आएगा जब वो हलाक हो जाए, ये दौलत हमारे किस काम आएगी जब हम दुनिया से ही चले जाएं। तो आइए अपनी दौलत को बचा बचा के, छुपा छुपा के ना रखें, उसको अपनी जिंदगी में अल्लाह के रास्ते में दें। जब मर गए फिर तो दूसरों का माल है, इंसान कहता रहता है मेरा माल मेरा माल, उसका माल वही है जो उसने खाकर खत्म कर दिया, फना कर दिया, पहनकर पुराना कर दिया, बाकी तो उसके वारसों का है। और अपने हाथों से दे, अगर हमने अपने हाथों से अपना जेवर अपना माल ना दिया तो आप किस इंतजार में, हमारे बच्चे देंगे, खुद दे नहीं सके तो हमारे बच्चे देंगे, खुद दे अपना माल और बच्चे अल्लाह के सपोर्ट। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में पहले पारे में आपने पढ़ा था ना, कि उनसे पूछा गया कि अपने बच्चों से उन्होंने पूछा कि किसकी इबादत करोगे मेरे बाद, माजा ताबुदूना मिन बादी, उन्होंने ये नहीं पूछा माजा ताकुलूना मिन बादी, हम तो यही फिक्र करते रहते हैं तुम खाओगे क्या, माजा ताकुलूना मिन बादी, मेरे बच्चों का मेरे बाद क्या बनेगा, पैगंबर का उसवा क्या है, माजा ताबुदूना मिन बादी, माजा ताबुदूना मिन बादी, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, ये फिक्र थी, ये फिक्र नहीं थी खाएंगे कहां से। अल्लाह तो खाली पेट निकलती है चिड़िया सुबह घोंसले से, शाम को आती है वो भी पेट भर कर आती है, तो अल्लाह के रास्ते में देना चाहिए। वैसे भी रमजान का महीना है, अच्छा मौका है। आखिरी आयात है और ये सूरत का दूसरा हिस्सा है, इसमें 3 बातें बड़ी अहम है। पहली ये कि दुनिया की जिंदगी इम्तहान का है, ठीक है, और इस इम्तहान के लिए अल्लाह ताला ने जो है रसूल और किताब भेजकर जिम्मेदारी अदा की है। दूसरी हकीकत, दुनिया और आखिरत दोनों का मालिक अल्लाह है, और जब मालिक अल्लाह है तो फिर फैसला भी अल्लाह ही करेगा और अल्लाह से हमें रजू करना चाहिए। तीसरी हकीकत कि जो भी नेकी को झुटलाएगा और उस दावत को जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जरिए और किताब के जरिए पेश की जा रही है तो उसका अंजाम बताया गया है, जो कबूल करेगा और उसका भी अंजाम। फरमाया इन अलैना लल हुदा व इन लना लल आखिरत वल उला فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. बेशक रास्ता बताना हमारे जिम्मा है और दर हकीकत आखरत और दुनिया दोनों के हम ही मालिक हैं. तो रास्ते से मुराद यानी अल्लाह ने दोनों रास्ते बता दिए हैं, बस हमने तुमको खबरदार कर दिया है भड़कती हुई आग में. हमने तुमको खबरदार कर दिया भड़कती हुई आग से, उसमें नहीं झुलसेगा वो इंतहाई बदबख्त जिसने झुटलाया और मुंह फेरा. और अब ये बताया जा रहा है कि रास्ते बता दिए, हदायत दे दी किताब और रसूल के जरिए, और फिर अंजाम भी सामने है. तो एक है आग का अंजाम जो कि नाफरमानों का है, और उससे दूर रखा जाएगा जो निहायत परहेजगार और पकीजा होने की खातिर अपना माल देता है. मुफस्सरीन कहते हैं कि आयत नंबर 17 से लेकर 21 तक ये भी अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह के लिए जो है ये आयतें नाजिल हुई. वसयुजन्नबुहल अतका अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुज़ा इल्ला इब्तिगा वज्हि रब्बिहिल आला वलसौफ यरदा. और जहन्नुम से आग से दूर रखा जाएगा वो निहायत परहेजगार जो पाकीजा होने की खातिर अपना माल देता है, उस पर किसी का कोई एहसान नहीं है जिसका बदला उसे देना हो, वो तो सिर्फ अपने रब्बे बरतर की रजा जुई के लिए ये काम करता है और जरूर वो उससे खुश होगा. तो इसको आप हाईलाइट करें जो असल चीज है, इल्लब्तिगा वजह रब्बिल आला आयत नंबर 20 और 21, अल्लाह की रजा के लिए काम करना. नीयत में हो खुलूस तो मंजिल है दो कदम, गालिब हो मसलहत तो हर एक मरहला तवील. और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु जो थे मक्का में जो गरीब बेकस लौंडी और गुलाम थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया हुआ था और उनके मालिक उन पर उनको मारते थे जुल्म करते थे, तो खरीद खरीद कर उनको आजाद करते थे ताकि वो उनके जुल्म से बच सकें. एक दिन उनके वालिद ने कहा कि ऐ मेरे बेटे, मैं देख रहा हूं कि तुम गरीब गुलामों और लोंडियों पर अपनी बहुत ज्यादा रकम खर्च कर रहे हो और तुम कमजोर गुलामों को आजाद कर रहे हो, तो अगर मजबूत जो गुलाम हैं, जो कवि हैं, जरा बहादुर हैं, उन पर रुपया खर्च करो तो तुम्हारे लिए कुव्वत बाजू बनेंगे. तो अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ने कहा कि अब्बा जान, मैं तो वो अजर चाहता हूँ जो अल्लाह के यहाँ है. इन्नमा उरीदु मा इंदल्लाह. अबा क्या मेरे अब्बा जान, मैं तो वो चाहता हूँ जो मेरे रब के नजदीक है. मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह की रजा की खातिर हमें नेकियां जो हैं वो करनी चाहिए. सूरत अद्दुहा है, इसका एक रुकू 11 आयात, अल्फाज और कलिमात 40 यानी 40, जबकि हरूफ 192 है. और इस सूरत का जो मौजू है ये रसूल अल्लाह को तसल्ली देना और परेशानी को दूर करना है. और इसके साथ ही जो है बताया गया है कि सोसाइटी में जो जरूरतमंद लोग हैं उनके साथ कैसा सलूक किया जाए. और रसूल अल्लाह को बताया गया कि जब आप यतीम थे तो आपके साथ इतना अच्छा अल्लाह का मामला रहा, तो फिर घबराने की क्या बात है. वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. तो आप देखें, कसम है रोशन की और रात की जबकि वो सुकून के साथ तारी हो जाए. ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे रब ने तुमको हरगिज नहीं छोड़ा और ना वो नाराज हुआ, क्योंकि वही कुछ दिनों के लिए बंद हो गई थी. रसूल अल्लाह बड़े परेशान थे कि अल्लाह नाराज तो नहीं हो गया. तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जैसे दिन के बाद रात आती है, इसी तरह जो है वही रुक गई है, तो कुछ देर के लिए जो है वो आपके लिए ये है कि आपके अंदर एक जान और कुव्वत पैदा हो जाए दोबारा वही को अखज करने के लिए, क्योंकि वो बहुत मुश्किल वक्त होता था जब आप पर वही नाजिल होती थी. तो अल्लाह नाराज नहीं है आपसे, और आपके लिए आने वाला दौर जो है वो पहले दौर से बेहतर होगा, और अनकरीब तुम्हारा रब तुमको इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे. तो मेरी प्यारी बहनों, ये पूरी की पूरी सूरत जो है ये गमों के बादल जो है उसको हटाने के लिए है, रसूल अल्लाह को तसल्ली देने के लिए है कि मैंने, अल्लाह ताला कह रहे हैं मैंने आपको कभी छोड़ा नहीं है. आने आज मुश्किल दिन है, अहले मक्का झुटला रहे हैं, मुश्किल हो रही है, कोई बात नहीं, आने वाले दिन अच्छा होगा। तो इसमें हम सब मुसलमानों के लिए भी बड़ी तसल्ली है, ये सूरत एक उम्मीद की किरण है। फिर अगली आयात में फरमाया अलम यजिद का यतीमन फआवा, क्या उसने तुमको यतीम नहीं पाया और फिर ठिकाना फराहम किया। वजद का दौलन फहदा, और तुम्हें ना वाकफे राह पाया फिर हदायत बख्शी, और तुम्हें नादार पाया फिर मालदार कर दिया। फअम्मल यतीम फला तकहर, लिहाजा यतीम पर सख्ती ना करो। वअम्मस साइला फला तनहर, और साइल को ना छिड़को। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमत का इजहार करो। तो ये आयात भी जो हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मिसाल दी है कि ऐ मोहम्मद तुम यतीम थे, फिर कैसे तुम्हारे दादा ने, चचा ने, तुम्हारे खानदान वालों ने तुम्हारी कफालत की, और कैसे फिर जो है तुम जैसे अल्लाह कहते हैं कि मैंने तुम्हें पैगंबर बनाया, और कितने मुश्किल हालात थे। तो इसी तरह ये हालात जो है तुम्हारे आइंदा भी बदल जाएंगे। और आखिरी आयत जो क्या है कि अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं उनको बयान करो। तो ये आयत बड़ी अहम आयत है कि अल्लाह के इनामात और एहसानात का जिक्र करके अल्लाह के आगे सबको जो है वो झुकना चाहिए। इसके बाद सूरत अलम नशरा है, और इस ये सूरत जो है इसकी 8 आयात हैं, 28 अल्फाज और कलेमात हैं, 28 हरूफ की तादाद 130 है। इसका मकसद जो है रसूल अल्लाह को तसल्ली देना है, पूरी सूरत का यही निचोड़ है। अलम नशरह लका सदरक ववदअना अनका विज़रक, ए नबी के हमने तुम्हारा सीना तुम्हारे लिए खोल नहीं दिया और वो तुमसे भारी बोझ उतार दिया जो तुम्हारी कमर तोड़े डाल रहा था। और ज़माना जाहिलियत में अहले मक्का में जो हालात थे, और रसूल अल्लाह को जब नबी बनाकर भेजा गया तो अल्लाह के नबी परेशान होते थे अपनी कौम की जहालत देखकर। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो बोझ तुम्हारे दिल से हटा नहीं दिया जो तुम्हारी कमर को तोड़ डाल रहा था। अल्लज़ी अनक़दा ज़हरक, जो तुम्हारी कमर को तोड़े डाल रहा था। वरफ़ाना लका ज़िक्रक, और तुम्हारा जिक्र जो है तुम्हारी खातिर बुलंद कर दिया। ये बड़ी अहम बात है। एक वो वक्त था कि अहले मक्का आपकी जान के दुश्मन थे, आपको मक्का से हिजरत पर मजबूर कर दिया, और उस जमाने में ये सूरतें नाजिल हो रही हैं, मक्की सूरत है, कि तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया। और देखें कि आज लोग जो हैं काफिरों के नामों से नाशना हैं, वो अबू जहल, वो उमैया बिन खल्फ और अबू लहब, और हर जगह मोहम्मद मोहम्मद का नाम और आपके मिशन का पैगाम दुनिया में है। तो ये है अल्लाह का नाम बुलंद, अल्लाह के रसूल का नाम बुलंद होना। कलमा पढ़ते हैं और उसके बाद अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अजान में, तो हर वक्त हम प्यारे रसूल पर दुरूद भेजते हैं। तो ये है अल्लाह के नबी के जिक्र की बुलंदी। और इतने साल पहले अल्लाह ने ये खुशखबरी दे दी, फइन्ना मअल उसरी युसरा, इन्ना मअल उसरी युसरा। इन दो आयतों में बड़ी अहम हकीकत बताई गई है कि हकीकत यह है कि तंगी के साथ फराकी है, आसानी के साथ मुश्किल के साथ आसानी है, उसर के साथ युसर है, और फिर तंगी के साथ आसानी है। तो ये याद रखें, कभी ना घबराएं, रात बहुत लंबी हो, बहुत तारीख हो, मुश्किलें बहुत शदीद हो, बीमारी बहुत सख्त हो, मुआश नहीं, किसी भी लिहाज से बच्चों को तलाक हो गई है, किसी को खुदा ना खास्ता कोई इम्तहान है, कभी घबराएं ना, मुश्किल के बाद आसानी जरूर आएगी। रात कितनी लंबी क्यों ना हो, तारीख क्यों ना हो, फिर सुबह रोशन जरूर आती है। जब बहुत शदीद अंधेरा होता है ना, वहीं से फिर रोशनी आनी शुरू होती है। जहां बहुत मुश्किल शिद्दत पर होती है ना, वहीं से फिर जो है वो रोशनी की किरण फूटती है। तो करना क्या है, फाइजा फरक तफन सब वाइला रब्बी का फरगब, लिहाजा जब तुम फारिग हो तो इबादत की मुशक्कत में लग जाओ और अपने रब की तरफ रागिब हो। हमारा काम क्या है, इधर उधर की बातें करके वक्त जाया ना करना, अल्लाह की इबादत करना और इबादत में मेहनत और मुशक्कत करना, अल्लाह को पाना, ये है हमारी जिंदगी का मकसद। यानी दावा का काम करें, दीन का काम करें, जिक्र अज़कार करें और अल्लाह को याद करें। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। सूरत 3 है, 8 आयात, 1 रुकू, अल्फाज और कलिमात 34, हरूफ की तादाद 105 है, 105। बड़ी खूबसूरत सूरत है, और इस सूरत का मौजू क्या है कि कयामत के बाद की जो जिंदगी है आखरत जजा सजा होकर रहेगी। सबसे पहले अल्लाह ताला ने जहां पे नबी कसरत से आए उन जगहों की कसम खाई है, फरमाया वतीनी वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, कसम है इंजीर और जैतून की और तूर सीना और उस पुर अमन शहर मक्का की। तो इंजीर और जैतून की जो जगह है इससे मुराद मुफस्सरीन कहते हैं कि ये फिलिस्तीन का इलाका है, दमिश्क का, बैतुल मक़दस का, यहाँ पे ये फल कसरत से होते हैं। वतूर सीनीन और ये तूर सीना है और ये जो है जहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम जो है हमें मिलता है कि अल्लाह ताला बुलाते थे उनको, और वहाज़ल बलदिल अमीन से मुराद मक्का की जगह है। और फिर इसके बाद कसम खाई अल्लाह ताला ने किस चीज पे, लकद खलकनल इंसान फी अहसन तकवीम, हमने इंसान को बेहतरीन साख पर पैदा किया। तो यानी जो भी कायनात है इनका मास्टरपीस कौन है, इंसान। सारी कायनात अल्लाह ने अपने लिए, सारी कायनात अल्लाह ताला ने इंसान के लिए सजाई, इंसान के लिए बनाई और इंसान को अपने लिए पैदा किया। तो सारी दुनिया हमारे लिए और हम अल्लाह के लिए। सुम्मा रददना हु असफला साफिलीन, फिर उसे उल्टा करके हमने सब नीचों से नीच कर दिया। तो यहां पर जो है ये बात बताई गई है आहसन तकवीम के इंसान को बहुत खूबसूरत और बेहतरीन अल्लाह ने पैदा किया क्योंकि मास्टरपीस है अल्लाह का। लेकिन इंसान फिर अपने अमलों की वजह से क्या होता है, असफला साफिलीन बन जाता है, जानवरों से भी नीचे गिर जाता है। और देख लें आजकल दुनिया में क्या हो रहा है। और दूसरे इसके मानी ये है कि बुढ़ापा जो है वो है कि इंसान दोबारा ऐसा हो जाता है कि सब कुछ समझने के बाद कुछ नहीं समझता। तो ये जिस्म और जहन की जो ताकतें हैं इनको बुराई के रास्ते में इस्तेमाल करने की बजाय क्या करना है, अल्लाह की बंदगी में इस्तेमाल करना है। ये ना हो कि हम दरिंदे बन जाएं, ये ना हो कि हम जो है कातिल बन जाएं, हम लोग शराबी बन जाएं, या ये कि हम जो है इखलाकी हदों को पार कर जाएं। यकीन नहीं आता कि औलाद ऐसा कर सकती है और यकीन नहीं आता कि वालदैन ऐसा कर सकते हैं। भाई भाई का गला काट रहा है, भाई बहन को मार रहा है, बहन भाई, यानी अजीब दुनिया का हाल है। तो यहां उन्हीं हालात की तरफ इशारा किया, फिर फरमाया कि बचेंगे अल्लाह के यहां कामयाब कौन होंगे, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात। ये दो बातें बार बार अल्लाह कहता है, ईमान और अमले सवाले। याद रखें बगैर ईमान के अमल काबले कबूल नहीं है और बगैर अच्छे अमलों के ईमान काबले कबूल नहीं है। तो जो ईमान लाएंगे अमले सवाले करेंगे, फलहुम अजरुन गैर ममनून, उनके लिए कभी ना खत्म होने वाला अजर है। फमा युकज़्ज़िबुका बादु बिद्दीन, बस ऐ नबी इसके बाद कौन जजा सजा के मामले को झुटला सकता है, तुम में से कौन कोई है जो कि क़यामत के दिन को झुटलाएगा, जो रब ऐसे कर सकता है। अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह सब हाकिमों से बड़ा हाकिम नहीं है? और इसका जवाब क्या है कि बला व अना अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन, और ये भी इसका जवाब है सुबहानक फबला, दोनों ही कि हाँ अल्लाह तू सब हाकिमों से बढ़कर हाकिम है। सूरत अल अलक, इस सूरत के दो हिस्से हैं और इस ये सूरत भी मक्की सूरत है, 19 आयात हैं, एक रुकू है, अल्फाज और कलिमात की तादाद 72 है और हरूफ 180 हैं, 180। अच्छा ये जो दो हिस्से हैं इसके, तो आइए पहले हिस्से को देखते हैं कि जो आयत नंबर 1 से लेकर 5 तक खत्म हो जाता है और यही वो आगाज़े वही की आयात हैं। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़्रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक, इक़्रा वरब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लम الانسان ما لم يعلم। पढ़ो ऐ नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया जमे में खून के एक लौथड़े से इंसान की तख्लीक की, पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया और इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो ना जानता था। तो मेरी प्यारी बहनों, इन 5 आयात में तालीम जो है, इल्म जो है, उसकी नसीहत की जा रही है।
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
يا رب العزت تو ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر لے, تو ہم سب سے راضی ہو جا, ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے, ہمارے بچوں کو متقیوں کا امام بنا دے, بے اولادوں کو اولاد کی نعمت سے نواز, اور ہمارے گھروں پہ حلال رزق کے دروازے کھول دے, بیماروں کو صحت کاملہ عطا کر, قرض داروں کو قرضوں کے بوجھ سے نکال, جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو نیک اور لائق کر دے, ان کے ذہن تیز کر دے, ان کو پڑھائیوں میں کامیاب کر, ان کو بھٹکنے سے بچا لے, اور ان کو متقیوں کا امام بنا دے. ہم سب کو مرتے وقت کلمہ نصیب کر, ہمارے والدین پر رحم کر, جو حمل سے ہیں ان کو خیریت سے نیک صالح اولاد دے اور صحت عطا کر اور خیریت سے فارغ کر. اور یا رب العزت سب کی نیک اور جائز خواہشیں قبول کر لے, ہمیں مستجاب و دعوات بنا دے, اور مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا اور اپنے پسندیدہ بندے بندوں نفس مطمئنہ میں شامل کر لینا. دارالایمان کے لیے جگہ کی تلاش اور اس کے لیے جو ہم کوششیں کر رہے ہیں, معجزہ کچھ دکھا دے اور ہمیں اچھی سی جگہ دے دے جہاں پہ ہم تیرے دین کی سربلندی کے لیے کوششیں کر سکیں, جہاں پہ ہم ذکر کریں, شکر کریں, قرآن کی تعلیم دیں اور تجھے یاد کریں. اور یا رب العزت تیرا کام ہے, تو نے کرنا ہے, ہمارا کام تو اپیل کرنا ہے, لوگوں کے دلوں کے دروازوں کو کھٹکھٹانا ہے, باقی آپ کا کام ہے, آپ نے کرنا ہے, اور آپ اس کے لیے آسانی کر دیجئے. یا رب العزت جو بچے جوان ہیں گھروں میں, اچھے نیک رشتے دے دیجئے, ان اچھے رشتوں کو سامنے لے آئیے, آسانی کر دیجئے, اور ہماری نسلوں میں نیکی لکھ دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین.